नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सर्वतारिणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम उपकारी सत्पुरुष श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा रचित यह अपूर्व अवसर नामक रचना है। सच में ये बहुत अपूर्व है, हमें ये अवसर भी बहुत अपूर्वता से मिल गया है, और उसमें भी जब वो अवसर आएगा, जब हम अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाएंगे, वो अवसर कोई बहुत अभूतपूर्व होगा। हम उस अवसर को प्राप्त करने की भावना भाते हैं। गुणस्थानों के क्रम में बढ़ते हुए कल तक 10वें गुणस्थान तक पहुंच गए थे। मोह के क्षय की चर्चा होने लगी थी। शत्रु और मित्रता के प्रति जहां संभाव होता है, राग द्वेष का जहां काम नहीं है, कषायें जहां नहीं है, विकार भाव जहां नहीं है, 10वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, क्षीण मोह गुणस्थान तक पहुंचा है यहां 14वें छंद में। फिर 15वें छंद में हमने अंतिम चरणों में यहां भी बात की कि चार घातिया कर्मों का भी क्षय हो जाए और संसार का पूरी तरह से अभाव हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, करने योग्य जो कार्य था वह कर लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 16 नंबर का छंद है, वेदनी आदि चार कर्म वर्ते जहां, वणी सींदरी वत आकृति मात्र जो, ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे, आयुष पूर्णे मटिये देहिक पात्र जो। क्या कह रहे हैं, वेदनी आदि चार कर्म यहाँ वर्तते हों, अरंत दशा का वर्णन है। अरंत भगवान कैसे होते हैं, वेदनी आयु नाम और गोत्र, इन चार कर्मों का यहाँ सद्भाव रहता है, और जो चार घातिया कर्म है उनका अरहंत अवस्था में अभाव हो गया है। यहाँ ऐसी भावना भा रहे हैं कि कब ऐसा अवसर आएगा कि मैं भगवान बनूंगा। अरहंत माने भगवान। मंदिर में जो प्रतिमाएं विराजमान होती है, वे प्रतिमाएं अरहंत भगवान की प्रतिमाएं होती है। हमारे मंदिर में समझ लीजिए, जो आदिनाथ भगवान विराजमान है, ये महावीर स्वामी विराजमान है, वे वर्तमान में तो सिद्ध भगवान है। पंच परमेष्ठियों में अभी वे महावीर भगवान कौन से परमेष्ठी में आते हैं, सिद्ध परमेष्ठी में आते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिमा कौन से परमेष्ठी की है, प्रतिमा अरिहंत परमेष्ठी की है। भले ही वे अभी सिद्ध हो गए हो, तो भी प्रतिमा अरिहंत परमेष्ठी की है। माने अरहंत परमेष्ठी भगवान होते हैं, अरहंत परमेष्ठी पूज्य होते हैं। सिद्ध अवस्था अंतिम लक्ष्य है, लेकिन अरहंत दशा में भी अनंत सुख है। अरहंत दशा प्राप्त करने की भावना है। हमारी क्या इच्छा है बोलो, हम क्या बनना चाहते हैं। सबके मन में बचपन से कोई ना कोई इच्छा होती है कि मैं ये बनूंगा। सबके मन में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, और फिर वो क्या बनता है ये तो उसका जैसी होनहार इच्छा तो होती है ना। हम क्या बनना चाहते हैं, आप ये कहेंगे अब क्या बनेंगे पंडित जी, अब तो निकल गई उम्र, अब कहाँ सपने देखने की बात है, अब तो कट रही है जैसी कट रही है, काट रहे हैं, टाइम निकल रहा है, रोजाना सूर्योदय होता है, सूर्यास्त हो जाता है। कि नहीं, आपने कुछ लक्ष्य बनाया कि नहीं अपने जीवन का, एक दिन के लिए ट्रेन का सफर करना हो तो महीनों पहले रिजर्वेशन कराता है। एक रात ट्रेन में बितानी हो ना, सोना हो हमारे को एक रात सिर्फ, तो दो महीने चार महीने पहले रिजर्वेशन कराता है, पूरी प्लानिंग करता है, विचार करता है। तो ये इसकी कोई प्लानिंग नहीं है आपकी, इस रिजर्वेशन की। मुक्ति प्राप्त करनी है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, और वो केवल ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग और उसके लिए बढ़ने वाले उत्कृष्ट रीति से बढ़ने वाले कदम, ये मनुष्य गति से ही बढ़ते हैं। अन्य गतियों में चांस नहीं है, नारकी त्रियंश और देवों को चांस नहीं है, मनुष्य गति के जीवों को ये चांस है मुक्ति प्राप्त करने का। हमने विचार किया उसके बारे में, हमने टिफिन तैयार किया, यहाँ से हमारे को चार घंटे का सफर तय करके दूसरी जगह जाना है, कल जाना है, ठीक है ना। और नाश्ते की चिंता अभी से होती है, देखो पहले से प्लानिंग करता है। आगे भी हमारे को कहीं जाना है, उसके आगे भी, कि हाँ उसके आगे तो जाना है ना, अटलांटा जाना है, कि उसके आगे भी कहीं जाना है, कि हाँ लंदन होते हुए जयपुर पहुंचना है, उसके बाद भी कहीं का प्रोग्राम है, तो कहेगा हाँ दो तीन प्रोग्राम और आगे के दिखते हैं, वहाँ का प्रोग्राम है, सोनगढ़ का कार्यक्रम है, वहाँ का है, आगे आगे के कार्यक्रम बतलाता है। अरे भैया उसके आगे भी कोई प्लानिंग दिख रही है क्या? हो सकता है कि वो आगे की प्लानिंग ऐसी हो सर्वज्ञ के ज्ञान में कि आपकी ये जितनी प्लानिंग की हुई है ये पूरी की पूरी प्लानिंग घर ही रह जाए और आपको पहले वहाँ के लिए तैयार करना पड़े। बोलो हो सकता है कि नहीं ऐसा? तो जहाँ ऐसा अर्जेंट कभी भी बुलावा आ सकता है वहाँ की तैयारी तो बिल्कुल अप टू डेट रहनी चाहिए, उसका तो बैकपैक तैयार ही होना चाहिए बिल्कुल, जब कहो तब तैयार है हमारा सूटकेस तैयार है, जब कहोगे तब। आधी रात को भी यदि कहें तो चलो, यमराज दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाए और कहे चलो तो तैयार है हम। ऐसी तैयारी है क्या? दुनिया में ऐसा कोई यमराज होता नहीं है जो लेने के लिए आता है, लेकिन जब मौत नजदीक आने लगती है तो अनेक बार हमें दस्तक मिलते हैं, अनेक बार आवाज आती है, हम सुन नहीं पाते उसे। जो सुन लेते हैं वे अपने जीवन को सुधार लेते हैं, जो नहीं सुन पाते हैं उनका जीवन नहीं सुधर पाता है। हमें यदि अपना जीवन सुधारना है तो कदम कदम पर हमारे को वो दस्तक सुननी पड़ेगी। आंखों से देखना कम हो गया, बाल सफेद हो गए, सर से झड़ने लगे, दांत हिलने लगे, और ये जो हड्डियों का बना हुआ ढांचा था पूरा का पूरा, ये बिल्डिंग ढूंढने लगी भूकंप की जैसे, हाथ पांव हिलने लगे, शरीर कांपने लगा, क्या हो रहा है ये शरीर में? डे बाय डे इस शरीर में गिरावट आ रही है ना, ये दस्तक मिल रही है कि नहीं हमारे को? कब ऐसा अवसर आ जाए कि एकदम झटके से ये क्या हुआ, ये कैसे प्रभाव आ गया, तो क्या तैयारी है उसकी? रोजाना दो चार घंटा किचन में देते हैं ना कुछ बनाने के लिए, तैयारी करते हैं कि नहीं? तो प्रभाव के लिए अपनी क्या तैयारी है, रोजाना तैयारी करते हैं कि नहीं उसके लिए? रमेश भाई क्या चल रहा है आजकल स्वाध्याय में? रोजाना चलता है यहाँ घर पे, सब लोग बैठ के करते हैं स्वाध्याय? अरे आप नहीं बैठते साथ में? हाँ साथ में बैठ करके करें, नहीं उससे बहुत लाभ मिलता है। अकेले बैठ करके तो करना ही है वो अलग है, लेकिन साथ में बैठने का मतलब है सत्संग। अकेले करते हैं आप तो कभी कभी गोल मार देते हैं, कौन पूछने वाला है बता? साथ में बैठते हैं तो पूछ सकते हैं, साथ में बैठते हैं तो चर्चा कर सकते हैं। आप यदि साथ में यहाँ सत्संग के लिए बैठेंगे तो सपना दिन तैयार है आने के लिए। क्या उनका भी पर्सनल कम होता है स्वाध्याय, सर इससे बड़ा अवसर क्या मिल सकता है। आप मंदिर में सत्संग रखते हैं तो वहाँ पहुँचना कठिन काम लगता है, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पहुँचना कठिन काम है। वहाँ तो 3 दिन रखते हैं, वो तो चलने दो रोजाना 3 दिन जो भी चलता है, लेकिन सुबह उठ करके यहाँ जो सत्संग होवे प्रतिदिन, शांति का वातावरण रहता है। ये जिनवाणी की चर्चा है, ये वीतरागी जिनेन्द्र देव की चर्चा है, ये गुरुओं की वाणी है जो घर में भी होनी चाहिए, मन में भी होनी चाहिए, परिवार में भी ये वाणी प्रवर्तन करनी चाहिए। ये पुण्य के परमाणु हैं जो चारों तरफ फैलते हैं। भाषा वर्गणा यद्यपि पौद्गलिक है, पुण्य भी पौद्गलिक होता है, लेकिन ये जो पुद्गल के परमाणु हैं, ये पुद्गल के परमाणु चारों तरफ विहार करते हैं, ये चारों तरफ घूमते हैं। जब ये वाणी हमारे मुख से निकलती है तो ये भाषा वर्गणा के परमाणु इस घर में फैल रहे हैं। ये पुण्य रूप है, ये शुभ रूप परमाणु है, ये सर्व अनुकूलता बनती है, वातावरण अच्छा होता है, माहौल अच्छा रहता है। सुबह उठते ही पहले नमोकार मंत्र का जाप करें, सुबह उठते ही पहले भगवान का स्मरण करें। क्यों करें? ऐसा सुना है हमने तो बचपन से कि दिन अच्छा रहता है। अरे दिन अच्छा रहता है वो तो सुबह पहले स्मरण करना और रात को स्मरण करना, इसका मतलब ये है कि 24 घंटे स्मरण करना। दिन की शुरुआत प्रभु के स्मरण से हो। अरे प्रभु बनना चाहेगा तो प्रभु के द्वारा बतलाया गया मार्ग अच्छा लगेगा, मार्ग अच्छा लगेगा तो मंजिल तक पहुंच पाएगा। जिसे मार्ग ही नहीं अच्छा लगा वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? आज यदि मेरा जीवन पूरा हो जाता है तो क्या साथ में जाएगा बोलो? कौन कौन साथ में जाएगा? कर्म के अलावा तो कुछ भी नहीं है साथ में जाने वाला। परिवार वाले कौन कौन लोग साथ में जाएंगे? और जितना इकट्ठा किया है हमने उसमें से क्या क्या साथ में जाएगा? इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखो कफन के जेब नहीं होती, ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है ले जाने की। जो कहते हैं शाम के भोजन की व्यवस्था हो तो विकल्प छोड़ देना कल के बारे में। कल किसने देखा? किसने देखा कल क्या होगा, क्या मालूम? ये भगवान बनने के लिए जन्मे हैं हम। हमारा जन्म विषय भोगों के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म खाने और कमाने के लिए नहीं हुआ है। ये मनुष्य जन्म जन्म मरण का अभाव करने के लिए मिला है, जन्म मरण के अभाव का पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। खाए पिए सो गए, घूम लिए, ऑफिस चले गए, घर के काम कर लिए, कपड़े धो लिए, आयरन कर लिए, खाना बना लिया, लड्डू बना लिए, कहाँ उलझ गए हम? आए थे किस काम से, करने लगे क्या काम? धोनी थी निज आत्मा, धोने लगे यह चाम। कबीरदास जी की पंक्ति है, बोलो आप। चाम चमड़ा शरीर। आए थे किस काम से, करने लगे क्या काम? धोनी थी निज आत्मा। और खूब समुद्र में जाकर के, नदी सरोवरों में, झरनों के नीचे खड़े होकर के, साबुन और शैम्पू लगा करके, तेल मालिश करके, ये क्या कर रहा है? चमड़े की कसाई कर रहा है। पवित्र करना था आत्मा को, धोना था आत्मा को, देखना था अपने आत्मा को, देखना था ज्ञायक को। जो मैं हूँ उसको तो भूल गया और पड़ोसी की सफाई में लगाए। बोलो, दुनिया में पड़ोसी के यहाँ सफाई करने वाले अच्छे नहीं होते, उनका फर्स्ट ग्रेड के लोग नहीं होते, वो फोर्थ कहलाते हैं, फोर्थ क्लास, जो दूसरों के घरों में जाकर के करते हैं सफाई। अपने घर में तो सब करते हैं साफ सफाई, लेकिन जो दूसरे के घर में जाकर के साफ सफाई करे वो। और हम क्या कर रहे हैं बोलो? दिन रात किसके घर की सफाई कर रहे हैं? दूसरे के घर की सफाई कर रहे हैं, शरीर की सफाई में लगे हैं। दिन रात देह की तरफ हमारी बुद्धि और उपयोग लगा रहता है। अपने आत्मा को देखने के लिए हमारे पास में समय कब है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सुबह से शाम तक के आपके डेली रूटीन में ये बात कब आती है कि हमें आत्म कल्याण करना है? आत्म कल्याण के लिए आप टाइम कब निकाल रहे हैं? सुबह उठने से लेकर दूसरे दिन सुबह उठने के बीच तक 24 घंटे में। मुकुंद भाई, हम यदि आपसे टाइम शेड्यूल पूछते हैं, पूरा टाइम टेबल, तो आप बराबर बतला दोगे कि कल सुबह तक आपके पास में क्या क्या काम है, क्या क्या करने वाले हैं आप। सुबह उठने के बाद में स्विमिंग करने वाले हैं, उसके बाद में ये करेंगे, नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे, ये करेंगे। मेरे जाने के बाद कल के बाद का टाइम पूछता हूँ, कार्यक्रम पूछता हूँ, तो क्या होगा बतलाओ। क्या आपके उस टाइम टेबल में ये स्वाध्याय है? क्या आपके उस टाइम टेबल में आत्मचिंतन है? क्या उसमें वस्तु स्वरूप का विचार है? क्या उसमें आत्म कल्याण की भावना जुड़ी है उसके साथ में? है ऐसा? मैं किसी और के लिए बात नहीं करता, मैं तो अपने लिए सोचता हूँ। मैंने मैं कहीं भी बैठ करके स्वाध्याय करता हूँ कुछ लोगों को साथ में बैठ करके, तो इसलिए नहीं करता कि दूसरों को लाभ मिलेगा, मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे करना है, मुझे लाभ मिलेगा। बैठिए आप, और आपको तो महेंद्र भाई का इतना अच्छा समागम मिला है, सच में आपको तो लाभ ले लेना चाहिए। अपने को जितना
सीडी है, कितनी डीवीडी,
हाँ सीडी चलाओ, डीवीडी चलाओ, टाइम नक्की करो, सब लोग आकर के तैयार होकर के आकर के बैठो, क्योंकि स्वाध्याय के बिना मार्ग नहीं मिलेगा। आपको मार्ग की यदि तलाश है तो वो मार्ग इसी के माध्यम से मिलेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी जो कुछ भी कर रहे हैं अपन, ये सब टिफिन तैयार कर रहे हैं अगले भाव के लिए, वहाँ वो ही खुलेगा जो यहाँ पैकिंग चल रही है। ये पूरा जीवन पैकिंग चलती है अगले भाव के लिए। पिछले भाव में पूरे जीवन भर हमने पैकिंग की थी, तो अभी टिफिन खुला है सामने। एक एक चीज नक्की है, हाथ में घड़ी कौन सी होना, अंगूठी कौन सी होना, तन पे कपड़ा कौन से कलर का होना, कितना नया होना, कौन सी साइज का होना, चश्मा कैसा होना, ये एक एक चीज पैक है पहले से। अब आप सोच लीजिए, आप वर्तमान में क्या सोच रहे हैं, आप कोई प्लानिंग नहीं है आगे की। स्वाध्याय सर्वोत्कृष्ट तप कहा है, स्वाध्याय के बिना जीवन निरर्थक है। आप यदि ये इंतजार कर रहे हैं कि इनके चले जाने के बाद में पंडित धीरू भाई आएंगे तप करेंगे, और फिर उनके जाने के बाद में फिर कोई और विद्वान साल 6 महीने में कभी आएंगे तप करेंगे, लेकिन तब तक का टाइम हमारे पास में नहीं है, इतनी गारंटी नहीं है कि इतना टाइम है मेरे पास में। मैं तो कहता हूँ 4-6 घंटा जब तक दिन भर स्वाध्याय नहीं करे, तब तक वो दिन ही समझ लेना बेकार चला गया। दिन भर में 4-6 घंटा स्वाध्याय नहीं हुआ तो, मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, इससे ज्यादा जयपुर में रह करके होता है स्वाध्याय, यहाँ तो क्या होता है 2.5-3 घंटा निकलता है यहाँ स्वाध्याय में, चर्चा में, प्रवचन में, मान लो आप, इससे ज्यादा होता है वहाँ प्रतिदिन, क्योंकि वो मेरे लिए है, वो व्यक्तिगत चीज है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उठते हैं, नहाते धोते हैं, मालिश करते हैं, घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए। ये शारीरिक स्वास्थ्य आपका निश्चित तौर पर बिगड़ना ही है। क्या मुकुंद भाई ये हालत होनी है बाबूजी जैसे, ये लेकर के चलना है, देख लेना। और आपकी तो ये अवस्था दिखती है 93, क्या हमारी नहीं आएगी इतनी? आपको लगता है इतनी उम्र आएगी अपनी?
नहीं, नहीं।
उसके पहले ही? अच्छा, उसके पहले तो कौन सी उम्र में ये बता दो। चलो एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, तो एक एक क्षण क्यों गवाएं अपन? एक क्षण भी यदि जा रहा है तो तकलीफ होनी चाहिए। रोज रात को बैठ करके एनालिसिस कीजिए अपने आप के बारे में कि मैंने दिन भर में क्या किया, अपने कल्याण के लिए, परिवार के लिए किया, समाज के लिए किया, अपने मुमुक्षु मंडल के लिए किया, समझ लीजिए आप जैन सोसाइटी के लिए किया तो सब तो ठीक है, मित्रों के लिए किया, लेकिन अपने आप के लिए क्या किया? जो कुछ भी कर रहे हैं सब औरों के लिए कर रहे हैं। जैसे हम अपने आप के लिए समझते हैं कि नहीं नहीं साहब, सुबह से लेकर के थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह प्राणायाम वगैरह करता हूँ, वो तो अपने लिए करता हूँ, वो थोड़ी ना अपने फैमिली, वो तो अपने लिए है, अरे वो भी पड़ोसी के लिए है, वो भी अपने लिए नहीं है भाई। यह तन संयम हेतु मिला, दर्शन मोह के क्षय का अवसर मिल गया है हमारे को। ये वीतरागी तत्व ज्ञान लोगों को नसीब नहीं होता, हमें नसीब हो गया है तो हमें इसकी महिमा नहीं आ रही है, क्या करें। ये सुनने का अवसर मिल गया है, ये जिनवाणी रखी है, ये देखो आप घर में इतनी जिनवाणी होते हुए पढ़ने का अवसर नहीं है हमारे पास में, लोगों को जिनवाणी मिलती नहीं है, सब तरसते हैं, सुनने का अवसर नहीं मिलता है, परिणाम नहीं आता है। अभी कम से कम इतनी भली होनहार तो है कि हमारे मंद कषाई के परिणाम है, इतनी भली होनहार तो है कि कोई यदि तत्व की बात सुनाता है समझाता है तो हम रुचि पूर्वक सुनते हैं, ये बहुत भली होनहार है। नहीं तो कषाय की तीव्रता में ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति कहे कि भैया जिनवाणी सुन लो तो तुरंत उल्टा पड़ता है, पढ़ रखी है हमने सब, अपने काम से काम रखो, आप पढ़ लो, हमने जवाब देता है। कषायों की इतनी तीव्रता दिखाई देती है। ऐसा कहते हैं टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ये मंद कषाय का मतलब नदी का बहाव कम है, मंद है, थोड़े से हाथ पांव मारेगा तो किनारे पर आ जाएगा, थोड़े से पुरुषार्थ की देर है। अपन लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत तो उनको करने की जरूरत है जिनको यही पता नहीं है कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या होता है। आत्मा भी कोई चीज होती है, जिन्होंने आत्मा शब्द ही नहीं सुना बेचारों को कितनी तकलीफ होगी, उनके सुधरने समझने के चांस कहाँ है और हमारी स्थिति क्या है। ये मिल गया है हमारे को तो अपूर्व अवसर मिल गया है, ये रचना मिल गई है। श्रीमद जी जैसे गुरु मिल गए हैं, वीतरागी संतों जैसे संत मिल गए हैं हमारे को, भगवान महावीर स्वामी की वाणी मिल गई है हमारे को, ये जिनवाणी सामने रखी है, जिनवाणी मिल गई है हमारे को, गुरुदेव श्री मिल गए हैं हमारे को। देखो तो सही, एक एक व्यक्ति कैसी भेद की बात करने वाले, एक एक विद्वान देखो, एक एक संतों की चर्चा देखो, ये वीतरागी दिगंबर संत जो कैसी गजब की बातें करते हैं, अपने आत्मा में डुबकी लगाते हैं और बाहर निकलते हैं तो उसी आत्मा की बात करते हैं। ये अवसर खोने योग्य नहीं है, फिर कह रहा हूँ मैं तो कहता हूँ आपको संकल्प लेना चाहिए आज ही, प्रतिदिन स्वाध्याय ग्रुप में बैठ करके करेंगे, व्यक्तिगत करेंगे वो एक्स्ट्रा बेनिफिट,
बोनस,
लेकिन सामूहिक बैठ करके करेंगे। आपको ये लग रहा होगा, हो सकता है कदाचित अरे यार ये अच्छा फंसा रहे हैं हमारे को, क्या सात दिन कर लिया, नहीं इसके बिना दिन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, इस स्वाध्याय के बिना दिन का अंत नहीं होना चाहिए। रात को सोते सोते ऐसा हो जाए कि सुबह उठे ही नहीं, मान लो तो हमारा तो गया ना जीवन, फिर कहाँ चांस है। अब सुन ले फिर कौन सुनाए दुर्लभ ये जिनवाणी। मंगत राज जी कहते हैं, ये कहते हैं कि जिनवाणी सुनने का जो अवसर मिल गया है, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बहुत भाग्य से हमारे को ये जिन धर्म मिल गया है। सच में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये सुना ना कि सब साथ में बैठ करके नहीं करते, अच्छा लगता है। आपका आपका जैसा परिवार तो एग्जांपल है पूरे मयामी में, समझ लीजिए आपका परिवार तो आदर्श है पूरे मयामी में। यदि किसी से भी चर्चा करोगे, ऐसा सत्संग और ऐसा समागम और ऐसा परिवार कहाँ है वैसा, कहीं नहीं है, ढूंढने से नहीं मिले ऐसा परिवार। लेकिन ये चीज और यदि जुड़ जाए उसमें तो सोने पे सुहागा है, तो और बढ़िया है। क्योंकि एक वाक्य मैंने दो तीन बार कहा है पिछले कई दिनों में, संतुष्टि घातक है। आत्म कल्याण के मार्ग में संतुष्टि घातक है। देखो जहाँ संतोष करना चाहिए वहाँ तो करता नहीं है, विषय भोग में, कमाने में, धनाधिक के संग्रह में, उसमें संतोष करना चाहिए तो करता नहीं है, वहाँ तो ये लगता है अरे पंडित जी इतने से क्या होता है आज के जमाने में, बोलते हो इससे क्या होता है, अरे तो कितना जीवन है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है, खर्चे कितने होते हैं, इतने से कुछ नहीं होता पंडित जी। और हम ये कह रहे हैं कि आप जिन खर्चों की बात कर रहे हो और जिस महंगाई की बात कर रहे हो, हम यहाँ कुछ दूसरी बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यदि आपको परमात्मा बनना है तो ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता इसके अच्छे से। आपसे जब स्वाध्याय सभा में बात करते हैं तो आप ये कहते हो कि हम भी बनेंगे भगवान, और फिर जब हम उसके लिए तैयारी की बात करते हैं, जब हम आपसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो कहता है कि हाँ साल में 5-7 दिन पढ़ लेते हैं। क्या कर रहे हो आप, इससे क्या होगा, ये क्या तैयारी है बताओ मेरे को। दुकान की तैयारी कितनी होती है, बिजनेस की तैयारी कितनी होती है, प्लानिंग कितनी चलती है उसके बारे में, कंटिन्यू प्लानिंग चलती रहती है, विचार करते रहते हैं अपन, इसकी भी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। बनाओ, आगे बढ़ो, ये अवसर मिल गया है, पता नहीं कौन रहे और न रहे, अगले साल में आ पाऊं के न आ पाऊं, रहूं के न रहूं, जीवन शेष रहे के न रहे, ठीक है ना, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसका समागम कितने समय का है, किसका साथ कितने समय का है। इस देश में आता है श्लोक, अलग अलग दिशाओं से आकर के पक्षी बैठते हैं, रात्रि भर विश्राम करते हैं, सुबह अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। सबका ऐसा ही, हमारा सबका, हम सभी अलग अलग दिशाओं से आए हैं, कुछ समय तक यहाँ रुके हैं, शांति से अपना काल व्यतीत करें, मेल मिलाप करके रहें, चर्चा करें, तो सिर्फ ये चर्चा करें कि ये क्या है, वस्तु स्वरूप की चर्चा करें, व्यर्थ की चर्चाओं में काल न गवाएं, समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है सच में। आपको यदि ऐसा लगता हो कि मेरे पास में लाइफ के भी 20 साल बाकी हैं, तो भी मैं कहता हूँ कि समय बहुत थोड़ा है, क्योंकि वो 20 साल कैसे निकल जाएंगे यदि मैं आपसे पूछूं मुकुंद भाई कि आपका अभी तक का पिछला जीवन कैसे निकल गया, तो आप कहते हैं पता ही नहीं लगता कैसे इतने बड़े हो गए। बोलो आप, है 50-60 साल की उम्र आपकी, तो यदि मैं पूछता हूँ आपने 50-60 साल कैसे बिताए, पता ही नहीं लगता इतने बड़े हो गए, हमें तो कभी कभी विश्वास नहीं होता कि हमारी इतनी उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो रही है, इस बात का भरोसा नहीं होता हमारे को कैसे बिता दिया हमने ये काल। तो हम ये कह रहे हैं ऐसे आगे आने वाले 20 साल कब बीत जाएंगे पता नहीं लगेगा, पलक झपकते निकलेंगे, सूर्योदय होता है और सूर्यास्त हो जाता है, पता नहीं लगता है कब टाइम निकल जाता है। बहुत सावधानी, वचन मुख से निकले, हित मित प्रिय वचन निकले, वचनों की अहमियत समझ लेना, क्योंकि ये वचन रिद्धि है, रिद्धि है, पृथ्वी का एक को नहीं मिली है, जल का एक के पास में नहीं है, अग्नि का एक वायु का एक जीव बोल नहीं सकते हैं, वनस्पति का एक ये झाड़ खड़े हैं, ये बाहर ये दुखी दुखी है, तकलीफ में है, अपनी बात किसी को कह नहीं सकते, भयंकर धूप में खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, बरसात में खड़े हैं, ओले गिर रहे हैं तो खड़े हैं, हैं कष्ट पा रहे हैं, लेकिन जवान से एक शब्द नहीं निकल सकता है, क्या हुआ होगा, इन्होंने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी व्यक्ति अपनी रिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं, प्राप्त रिद्धि का दुरुपयोग करते हैं, उनसे रिद्धि छीन ली जाती है। पुराणों में एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, ऐसे रिद्धियां प्राप्त हो गई और उन्होंने अपनी रिद्धियों का दुरुपयोग करना चालू किया, अब कितने दिन रहेगी वे रिद्धियां। आपको वचन रिद्धि मिल गई है, आपको बोलने की रिद्धि मिल गई है, सामर्थ्य मिल गई है, तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, दूसरों को भी शीतलता मिले और स्वयं को भी शीतलता मिले। दो शब्द आपके मुख से निकले हुए मधुर शब्द चमत्कार कर सकते हैं, माहौल बदल सकते हैं, और आपके दो कटुक शब्द पूरा माहौल खराब कर सकते हैं, रंग में भंग कर सकते हैं। वचन ही तो है कि कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं ये वचन, सुधरे अपना जीवन सुधरे, जिन वचन से बढ़कर और अच्छे कोई वचन नहीं हो सकते। ये गुनगुनाएं, ये संगीत चलाएं घर में, ऐसा म्यूजिक चलाएं, भक्ति चलती रहे, स्तुति चलती रहे, पाठ चलता रहे, धुन चलती रहे, हमारे दिमाग में चलती रहे, गुनगुनाते रहे, गूंजती रहे हमारे दिमाग में, ये जिन ध्वनि हमारे दिलो दिमाग में गूंजती रहेगी, तो मैं गारंटी देता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि स्वयं जिन बन जाएगा, जिन ध्वनि जिनके कानों में गूंजती है, जिन ध्वनि जिनके कंठ के माध्यम से गाई जाती है, वे अल्प काल में स्वयं जिन बन जाते हैं। लेकिन फिर कटु बात कह दूं कि ये भगवान बनने की बातें तो हमारे को जचती नहीं है। ये बातें तो ऐसी लगती है, हाँ हाँ भगवान तो ठीक है, भगवान तो अपने को क्या करना है, अपन तो बस अपनी ये लाइफ, इससे आगे की सोचते ही नहीं है। कितना भी कह दूं मैं, इससे आगे की बुद्धि हमारी चलती नहीं है। रमेश भाई, मैं कितना भी उपदेश दूं, लेकिन फिर भी हमारा जो सोचने का नजरिया है, इस कदर बैठा हुआ है अपने अंदर में कि हमारे को वर्तमान भाव के आगे और कुछ दिखता ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही दिखता है कि हम यहाँ शांति से रहें, हमें सिर्फ इतना ही दिखता है अच्छा मकान हो, हमें सिर्फ इतना ही दिखता है कि यहाँ व्यवस्थाएं हो, हमें सिर्फ इतना ही दिखता है कि बुढ़ापे का कोई सहारा हो, हमें इतना ही दिखता है कि पैसा होगा तो बच्चे पूछेंगे, इतना ही दिखता है हमारे को। कब तक, लेकिन कब तक पूछेंगे? शमशान में छोड़ करके आएंगे और घर आकर के पार्टी करेंगे? बोलो, हंसी मजाक चल रहा होगा, अचानक कोई आ जाए घर में तो एकदम फकफका जाते हैं, ये कहां से आ गया। टीवी चलता है, मौज मस्ती चलती है, खेल कूद होने लगता है, हाँ ठीक है जिनको जाना था चले गए, कुछ बातें कही है दिल में लगे, करना ही चाहिए ये काम। हम तो घर में भी डे फर्स्ट से स्वाध्याय शुरू किया हमने, जिस दिन शादी हुई उस दिन से साथ में बैठकर। सोचो आप, यदि सामूहिक स्वाध्याय नहीं है, कोई बात आपके चिंतन में आएगी, कोई बात आपके चिंतन में आएगी, कोई बात आपके चिंतन में आएगी। फिर कभी कभी क्या होता है, आप व्यक्तिगत स्वाध्याय करते हैं तो आपको ऐसा लगता है यार ये इतनी गजब बात आई है, ये बात तो वो पढ़ते तो कितना अच्छा लगता। कभी कभी किसी का प्रवचन सुनते हुए आपको लगता है यार वो बिल्कुल ऐसी है, वो बिल्कुल ऐसे हैं, ये बात तो वो सुनते तो कितना अच्छा लगता। आपके मन में ये अफसोस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तो सब साथ बैठ करके स्वाध्याय करते हैं। ये मुमुक्षुओं का परिवार है, हम लोगों का सबका संगठन, सबकी मंजिल वो है। कितना लंबा सफर तय करना है हमारे को यहाँ से सिद्ध अवस्था तक का, इतना लंबा सफर है, सबको जाना है कि नहीं? टेम्परेरी कुछ समय के लिए हम लोग बिछुड़ेंगे क्या, लेकिन अनंत काल तक हम सबको साथ रहना है। बोलो, आप बिछुड़ना चाहते हैं कि अनंत काल तक साथ रहना चाहते हैं? ये बात अलग है कि वहाँ साथ रह करके भी कोई किसी की तरफ देखता नहीं है, सब अपने अपने में मगन रहते हैं। वो अवसर कब आएगा जब मैं भगवान बनूंगा? कब धन्य सु अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं, हरिहंस अवस्था पाऊं फिर सिद्ध स्वपद पा जाऊं। चार हंस दशा तक पहुंचा दिया इन्होंने, चार घातिया कर्मों का क्षय और अघातिया कर्म बचे हैं। वे अघातिया कर्म कैसे हैं? जली हुई जेवड़ी के समान, रस्सी पड़ी है जली हुई है, ताकत कितनी बची है? फूंक मारो तो खत्म, इतनी सी ताकत बची है। उन अघातिया कर्मों में कोई ताकत नहीं होती। देखिए आगे क्या कहते हैं, मन वच काया अरु कर्मों की वर्गणा, छूटे जहाँ सकल पुद्गल संबंध जब। और आगे बढ़ते जा रहे हैं, मन की वर्गणाएं, वचन की वर्गणाएं, काय की वर्गणाएं, जितनी भी कर्मों की पुद्गल वर्गणाएं हैं, जहाँ छूट जाए सभी पुद्गलों का संबंध, अयोगी गुणस्थान वर्तता है फिर वहाँ, चौदहवा गुणस्थान। अरहंतों का घातिया कर्म क्षय होने पर तेरहवा गुणस्थान, और सकल पुद्गल का संबंध जहाँ छूट जाए, और महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जब। महाभाग्यशाली सुखदायक जो पूर्ण अबंध रूप दशा है, ये जहाँ प्रकट हो जाएगी, उसका नाम है सिद्ध अवस्था। फिर सिद्ध अवस्था का वर्णन करते हैं। एक परमाणु मात्र की न स्पर्शता, एक परमाणु मात्र की भी स्पर्शता नहीं है, एक परमाणु मात्र को भी मैं छूता नहीं हूँ, एक परमाणु मात्र का भी स्पर्श नहीं करता, समस्त पुद्गल परमाणुओं का संबंध छूट गया है, पूर्ण रूप से कलंक विहीन अडोल अपना जो स्वरूप है, शुद्ध निरंजन चेतन मूर्ति, ऐसा अनन्य उससे तन्मय मैं ही हूँ, अन्य दूसरा नहीं है, अनन्य माने मैं स्वयं, अगुरु लघु अमूर्त सहज पदस्थ, जब सहज अपने पद में स्थित रहने वाले अगुरु लघु हो गए हैं, अमूर्त हो गए हैं, ये सारे गुण प्रकट हो गए हैं वहाँ से अवस्था में, अशरीरी अवस्था हो जाती है, शरीर दुखों को भोगने का माध्यम है, जितनी परेशानियां हैं वो सब शरीर को लेकर के है, भूख शरीर को लगती है, प्यास शरीर को लगती है, पसीना शरीर को आता है, सर्दी गर्मी शरीर को लगती है, सर दर्द शरीर में होता है, पेट दर्द शरीर में होता है, घुटनों की प्रॉब्लम शरीर में होती है, कमर दर्द शरीर में होता है, हार्ट की प्रॉब्लम शरीर में होती है, आप देखो जितनी समस्याएं हैं, जितनी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, ये सारी समस्याएं शरीर को लेकर के है, तो आप ये चाहते हैं कि अशरीर अवस्था हो जाए, आप ये चाहते हैं कि ऐसी अवस्था हो जाए जहाँ शरीर ही न रहे, ऐसे प्रयोग किए हैं कई स्थानों पर आचार्यों ने कि यह शरीर तो दुखों को भोगने का माध्यम है, इसलिए हम ऐसी अवस्था को प्राप्त करने की भावना भाते हैं, वो अपूर्व अवसर कब आएगा, जब देह नहीं रहेगी, जब शरीर नहीं रहेगा, उस अवस्था का नाम सिद्ध अवस्था है। कहाँ जाएंगे वही फिर चौदहवें गुण स्थान के बाद, तो का पूर्व प्रयोग अधिक कारक के योग से ऊर्ध्व गमन सिद्धालय में सुस्थित, जब ऊर्ध्व गमन सिद्धालय की प्राप्ति पूर्व प्रयोग आदि के कारक से, पूर्व प्रयोगात पूर्व के प्रयोग से संस्कार वश गमन करता है यहाँ से ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व गमन होता है और साधि अनंत काल तक अनंत समाधि सुख में, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत आनंद, ऐसी अवस्था होती होगी, क्या अपूर्व आनंद होता होगा मुनिराज, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए, जिस पूर्णता के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, अनंत ज्ञानी जीव सिद्धालय में विराजमान, वे सब उसका अनुभव कर रहे हैं, असंख्यात भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव चारों गतियों में, वे मानो उसके लिए तरसते हैं संयम अंगीकार करने के लिए, और ये मिथ्या दृष्टि जीव को उस आनंद की सुदबुद्ध नहीं है। तो कभी सोचता हूँ कैसा आनंद होता होगा यार, जिसके लिए घर छोड़ दिया आपने, वो तो कैसा जुनून होता होगा, दुनिया में ऐसे दिखते हैं लोग, ये हमारे घर में बेटी है समझ लो कि बेटा है, और कहीं संबंध करना चाहता है कहीं दूसरी जगह, और घर वालों ने मना किया और नहीं माने, समझ लीजिए तो घर वालों ने धमकी देना शुरू किया और नहीं माने, और फिर हमने कहा घर से बेदखल कर देंगे, तो कहता है कोई बात नहीं, तो वो जुनून कितना होगा, विषयों के आनंद का और वो रुचियों का उत्साह इतना होता है कि इस घर को परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो जिसको आत्मा का आनंद मिल गया हो और वो घर छोड़ करके निकल जाए, तो कौन सा आश्चर्य की बात है, बोलो। विषयों के आनंद में व्यक्ति घर छोड़ देता है, तो आत्मा के आनंद में घर छोड़ करके निकले, निधियां हैं वो कुछ, वो रत्न कुछ अपूर्व हैं, आंतरिक रत्नों की बात करता हूँ मैं, ये जड़ रत्न तो अनंत बार मिले हैं और अनंत बार छूट गए हैं, लेकिन अंदर में जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि रत्न हैं, वे रत्न बड़े विलक्षण हैं, वे रत्न बड़े अद्भुत जाति के हैं, उन रत्नों का स्वरूप कुछ और प्रकार का है, एक बार देह से भिन्न अपने आप को चैतन्य स्वरूप स्वीकार करने की कोशिश तो करो, एक बार मानो तो सही कि मैं चेतन तत्व हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ, मैं अभूतपूर्व आत्म तत्व हूँ, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ मैं, इस बात को स्वीकार तो करो एक बार। आप अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, अपने आप को चेतन स्वीकार करो, और फिर देखो तकलीफ कहाँ है, फिर तकलीफ नहीं दिखेगी। सर दर्द हो रहा है, कितने होता है सर दर्द ये बता दो हमारे को, शरीर में होता है उदय जो है असाता। देखो शरीर सर दर्द होने में कितनी चीजें मिक्स है, सर दर्द होने में एक तो सर, सर ही नहीं होगा तो सर दर्द कैसा, तो एक तो सिर, ये क्या चीज है, ये पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड है, एक पुद्गल परमाणुओं का समुदाय है ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये आहार वर्गणाएं हैं पुद्गल की अनेक प्रकार की वर्गणाओं में से। अच्छा इसी के दर्द के काल में ये क्यों दर्द कर रहा है, इस दर्द के पीछे क्या कारण है, तो हम कहते हैं असाता वेदनीय कर्म का उदय। एक तो सर, इसके साथ में दूसरा सर तो है आहार वर्गणा, और जो कर्म का उदय था वो है असाता वेदनीय कर्म का उदय, वो है कारमाण वर्गणा। बराबर, कर्म का उदय कारमाण वर्गणा, और ये सर आहार वर्गणा, और मैं कौन,
शरीर के कारण,
शरीर से भिन्न, शरीर से भिन्न चेतन आत्मा। अब बताओ आप, कर्म के उदय में और शरीर में भी निमित्त निमित्त संबंध दिखता है, इसके अलावा कर्ता कर्म संबंध नहीं है, उन दोनों में भी अन्योन्या भाव है कारमाण वर्गणा में, और ये जो आहार वर्गणा दिखती है इन दोनों में अन्योन्या भाव है, तो मेरे साथ तो तन का और कर्म का दोनों का अत्यंत अभाव है, मैं कहां उसके संदर्भ में तकलीफ पा रहा हूं। शरीर के साथ में आत्मा का तो अत्यंत अभाव है ना, दोनों द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, अत्यंत अभाव है दोनों में, और कर्म के उदय में और सर में इनमें अन्योन्य अभाव है, दोनों पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। दो पुद्गल द्रव्य की पर्यायों में, वर्तमान पर्यायों में अन्योन्य अभाव होता है, और दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है, जिनके बीच में अत्यंत अभाव होता है उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है,
दर्शन मौन के कारण ही होता है।
हाँ, ये वो पहली सीढ़ी है, धर्म की पहली सीढ़ी है, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, दर्शन मोह का अभाव। प्रथम में प्रथम करने योग्य कर्तव्य है दर्शन मोह के अभाव का प्रयास, सबसे पहले करने योग्य कार्य है हमारा, सबसे पहले करने योग्य जिम्मेदारी है हमारी, दर्शन मोह का क्षय कैसे हो, कोशिश कीजिए एक बार, कोशिश करें। कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐसा कि ये जो शरीर हमारे को मिल गया है, हम चलते समय, बोलते समय, खाते पीते समय ऐसा विचार करें एक बार, शरीर नहीं हूँ मैं, इन सबको जानने वाला हूँ, बोलो मैं खाने वाला के खाने वाले को जानने वाला कौन हूँ, मैं बोलने वाला कि बोलने वाले को जानने वाला, मैं सोने वाला कि सोने वाले को जानने वाला, मैं बिजनेस करने वाला कि उसे जानने वाला, चलने वाला कि चलते हुए को जानने वाला। लेकिन चलते हुए कभी ऐसा लगता है कि शरीर अलग चल रहा है और मैं अलग चल रहा हूँ, बोलो न्यारा है ना दोनों, मैं अलग हूँ ना, मैं आँख से नहीं देखता, मैं ज्ञान से देखता हूँ, लगता है कभी ऐसा, मैं कान से नहीं सुनता, मैं ज्ञान से सुनता हूँ, लगता है कभी ऐसा। कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, सर से भिन्न अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए, देह से भिन्न अनुभव करने की कोशिश कीजिए, देह की मौजूदगी में देह से भिन्न, देह रहेगी, देह तो अरंतों की भी रहती है, इसलिए देह छूटने के बारे में दिमाग नहीं लगाना, दिमाग को ये लगाना कि देह के रहते हुए भी मैं देह से भिन्न कैसे अनुभव कर सकता हूँ। देह रहे तो भी अरहंत दशा हो सकती है, लेकिन राग और मोह रहे, दर्शन मोह रहे, तो शुरुआत भी नहीं हो सकती है। इसका मतलब शरीर हमारे आत्म कल्याण में बाधक नहीं है, हमारा मोह हमारा राग ये आत्म कल्याण में बाधक है। अरहंत भगवान वीत राग होते हैं, वीत देह नहीं होते, शरीर है राग नहीं, शरीर है, शरीर के प्रति तन्मयता चौथे गुणस्थान वाले के भी नहीं है, फिर छठवे सातवें गुणस्थान वालों की तो कैसी अपूर्व दशा होती होगी, श्रेणी चढ़ने वालों की क्या कहने, फिर अरहंत दशा कैसी स्थिति होती होगी। देखो आप दो चार लाइनें और है छोटी छोटी सी, कुछ बात नहीं है, तो बीच बीच में मैं इधर उधर की बातें कह देता हूँ आपसे छंद चलते चलते, इसलिए कह देता हूँ कि फिर इधर उधर की बातें कहने के लिए अलग से कब आऊंगा। यहाँ मौका लगाए तो यही कह दो बीच में। दर्शन मोह तो दर्शन मोह कम नहीं होता, दर्शन मोह के टुकड़े होते हैं, दर्शन मोह नष्ट होता है, दर्शन मोह के नष्ट करने के लिए अभ्यास चाहिए, और वो अभ्यास कैसे होगा, भेद विज्ञान का अभ्यास। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ प्रतिदिन यहाँ स्वाध्याय हो और स्वाध्याय के बाद में बैठकर ऐसे शांति से बैठे, ऐसे सराहना लेकर के आंख बंद करके और विचार करें क्या पढ़ा, वो उपाय चालू होगा दर्शन मोह के क्षय का, स्वाध्याय नहीं, लेकिन स्वाध्याय के बिना चिंतन क्या करोगे। स्वाध्याय तो जरूरी है ना, जो बात स्वाध्याय में पढ़ी हो, जो बात दिनवाणी के माध्यम से सुनी हो, उसका आराम से बैठ करके चिंतन मनन करना, ये विधि है दर्शन मोह के क्षय की। छियासीवी गाथा में उपाय बतलाया, रोशन सर पढ़ते हो ना, छियासीवी गाथा में बतलाया, सत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, द्रग मोह माने दर्शन मोह, द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। मूल गाथा है छियासीवी गाथा, आचार्य कुंदकुंद स्वामी की 2000 साल पहले की, दर्शन मोह का क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। बोलवा ग्रंथ खोल करके देखो, मूल गाथा पढ़ो, 86 नंबर की गाथा, 86 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, आप यदि दर्शन मोह का नाश करना चाहते हो स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, रास्ता मिलेगा, मिलेगा रास्ता जरूर मिलेगा। आत्म कल्याण की भावना भाई है, आपको रास्ता जरूर मिलेगा, मंजिल मिलेगी। अरे जिनके अंदर से ललक होती है उनको मंजिल मिल जाती है, अंदर से भावना होनी चाहिए। मैंने कहा था एक दिन, भावना भवनाशिनी, आपकी भावना होगी भवन बनेगा, आपकी भावना होगी भव का नाश भी होगा, जैसी होनार होती है वैसे परिणाम आते हैं, जैसे परिणाम आते हैं वैसा आपका भविष्य बन जाता है, वैसी होनार हो जाती है। देखिए जो पद झलके श्री जिनवर के ज्ञान में वो है जिनवाणी, क्या लिखा, जो पद झलके श्री जिनवर के ज्ञान में, कह न सके पर वह भी श्री भगवान जब, अरे जो बातें भगवान के ज्ञान में झलक रही है वे बातें भगवान स्वयं नहीं कह सकते, उस स्वरूप को अन्य वचन से क्या कहूँ, अनुभव गोचर रहा मात्र रहा वह ज्ञान, जब अनुभव की चीज है वचनों में नहीं आती, शब्दों में नहीं कही जाती, क्या कहें, किसको कहें, कैसे कहें, शब्दों में कहा नहीं जा सकता। अरे श्री गुरु शब्दों में यदि आनंद दे सकते होते तो अब तक तो हमें कभी का मिल गया होता, शब्द तो जड़ है, शब्दों में आनंद नहीं आएगा, शब्दों में नहीं आता आनंद, और इन शब्दों को शब्द मात्र ही रखिए, ये शब्द जिसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, ये शब्द जिसकी तरफ दिखाते हैं ये शब्द जिसको दिखाना चाहते हैं उसको देखने का प्रयास कीजिए। ये शब्द किसको दिखा रहे हैं, मतलब वो देखो आप, लगता है किसको दिखा रहे हैं, ऐसे दिखाते हैं ना इशारा करके, उंगली देखता है, अरे जिधर इंडिकेट कर रहा है उसको देख। ये शब्द किसको दिखा रहे हैं, श्री जिन को दिखा रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई वाणी को दिखा रहे हैं, भगवान का स्वरूप बतला रहे हैं, गुण स्थानों से चढ़ते हुए मिथ्या दृष्टि जीव को भगवान बना दिया इन्होंने। और ये जिनवाणी तो ये कहती है तू भगवान है, पहले इस बात को स्वीकार कर ले, तुझे भगवान बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, जो है उसे उतारना है ऊपर से। मोह राग द्वेष कषायें विकार विभाव सबको उतारना है, जैसे जैसे उतरते जाएंगे मोक्ष का मार्ग नजदीक आता जाएगा। शाम को करेंगे अपन मोक्ष तत्व के बारे में चर्चा, दोपहर में मोक्ष तत्व की चर्चा करनी है आज अपने। ये मोक्ष तत्व का वर्णन चल रहा है, श्री जिनवर के ज्ञान में झलके हैं, कह न सके, कह नहीं सकते उसको भगवान भी, स्वयं भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो वचन अगोचर है, क्योंकि उसका वर्णन वचनों से नहीं किया जा सकता है, अनुभव गोचर है, अनुभव की वस्तु है, अनुभव कीजिए, फील कर सकते हैं आप, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, महसूस करने की कोशिश कीजिए, देह से भिन्न अपने आप को, आपकी सारी शरीर की तकलीफ भिन्न नजर आएगी, देह से भिन्न देखने की कोशिश कीजिए, यही परम पद पाने को अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, यही परम पद पाने को, धर ध्यान जब, जब मैं ध्यान धरूंगा इस अपूर्व पद की प्राप्ति के लिए, शक्ति विहीन अवस्था मन रथ रूप जब, तो भी निश्चय, देखो क्या कह रहे हैं, शक्ति विहीन है, अवस्थाहीन है, क्या करूं मैं, श्रीमद जी का शरीर जितना क्षीण था हमारा इतना क्षीण दिखता है क्या, बोलो, और फिर भी हमें ऐसे लगता है कि नहीं नहीं शरीर के लिए, उनको देखो आदर्श दिखते हैं अपने, तन का विकल्प जिन्होंने तोड़ दिया, होता हो सो होता हो, क्या संभाले इसको, संभालते संभालते भी बिगड़ना है, अंत समय में बिगड़ना ही इसका स्वरूप है। कह रहे हैं तो भी ऐसी अवस्था होने के बावजूद भी निश्चय, तो भी निश्चय राजचंद्र के मन रहा, क्या कह रहे हैं, तो भी ये राजचंद्र जी ये कह रहे हैं, श्रीमद जी ये कह रहे हैं कि मेरे मन में ये निश्चय रहा कि प्रभु आज्ञा से हूँ वही स्वरूप, जब जिनेन्द्र देव की आज्ञा से, उनके बतलाई हुई आज्ञा, जैसी आज्ञा लेने के लिए आप वहाँ जाते हैं वैसी आज्ञा आपको ये जिनेन्द्र देव दे रहे हैं, वैसी आज्ञा आपको ये स्वयं दे रहे हैं, बोलो आप, श्रीमद जी आज्ञा दे रहे हैं आपको, स्वयं भी आज्ञा ले रहे हैं जिनेन्द्र देव से, और हमारे को इन शब्दों के माध्यम से आज्ञा दे रहे हैं कि आप ये काम करो आप अवश्य सफल होंगे, आप भावना भाव स्वाध्याय करने की आप अवश्य सफल होंगे। देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना विकल्पों के होता हो, ये बात भी सही है कि विकल्पों से काम नहीं होता, लेकिन काम होने के पहले विकल्प नियम से आते हैं, नियम से आते हैं, आपके विकल्पों को देख करके हम ये बात कह सकते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, आपके विकल्पों को देख करके इस बात का अनुमान लगा सकते हैं आपका कदम क्या होगा, चौराहे पर खड़े हुए हैं और आपके विकल्पों को देख करके हम बतला सकते हैं कि आप कौन सी दिशा में जाएंगे, यहाँ आपके विकल्प क्या चल रहे हैं, बोलो, यदि आपको सम्यक दर्शन का विकल्प भी नहीं आता तो आप भूल जाइए कि दर्शन मोह का क्षय होगा, आपको विकल्प ही नहीं आता, अभी तो दिन बीत जाता है आपको विकल्प ही नहीं आता, आज का दिन फिर निकल गया, कहीं जाना हो ना किसी से मिलने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना हो और दिन भर टाइम नहीं मिला तो रात को कितना खेद व्यक्त करता है, यार आज मेरे को डॉक्टर के पास में जाना था, पूरा दिन यूं ही निकल गया, मैं जा नहीं पाया, और दूसरा दिन भी किसी काम में उलझ जाए तो दूसरे दिन भी शाम को सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, इतना जरूरी है वहाँ जाना और जा नहीं पाया। आपको एक दिन आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो शाम को ऐसा निकल पाता है कि एक दिन और निकल गया, मेरी आत्मा से भेंट नहीं हो पाई, मेरा उपयोग अपने स्वभाव को देख नहीं पाया, ये निकल पाता है आपको? ऐसा लगता ही नहीं है हमारे को, इसको काम ही नहीं समझते हैं। इस काम को तो हमने बिल्कुल लास्ट में डाल रखा है, लेकिन लास्ट में डाल दो तब तक भी मैं कहता हूँ ठीक है, हमने डाल ही नहीं रखा है। आप भले लास्ट में डाल दो कोई बात नहीं, आप इस काम को, भेद विज्ञान के काम को यदि आप लास्ट में भी डाल देते हैं तो भी कम से कम ऐसा तो होगा कि रात में सोते समय तो कम से कम लास्ट में ये काम करेंगे, लास्ट में डाला है तो। लेकिन अभी तो क्या हुआ है, आप लास्ट में तो क्या, हमने तो लिस्ट में ही नहीं है, तो कब होगा? जिनके विकल्पों में भेद विज्ञान नहीं है, जिनके विकल्पों में आत्मानुभूति नहीं है, जिनके विकल्पों में सम्यक दर्शन नहीं है, जिनके विकल्पों में मोक्ष मार्ग नहीं है, उनके जीवन में कैसे प्रकट होगा मोक्ष मार्ग? जीवन में करने योग्य काम यही है, इसके अलावा दूसरे कोई काम करने योग्य नहीं है। दुनिया के सारे काम पुण्य के उदय से होते हैं, लेकिन ये एकमात्र काम ऐसा है जो पुण्य का उदय नहीं, पुरुषार्थ चाहता है। सारे काम पुण्य के उदय से होंगे, सारी व्यवस्थाएं सेट है आपके उदय के हिसाब से, उस व्यवस्था में फेरफार करने का आपका कुछ नहीं चलता है, पूरी की पूरी व्यवस्थाएं सेट है उदय के हिसाब से सेट है। अब क्या करना बोलो आपको, यदि ये सारी व्यवस्थाएं उदय के हिसाब से सेट है तो हम क्या करें कि तू पुरुषार्थ कर, निश्चिंत कर रहे हैं ये सब आपको, ये सब आपको निश्चिंत कर रहे हैं कि आप पुरुषार्थ कीजिए, आप पुरुषार्थ कीजिए, आप तूफानी वेग से कदम बढ़ाइए, दर्शन मोह आड़े नहीं आएगा, कर्म का उदय आड़े नहीं आएगा, कर्म का उदय परेशान नहीं करेगा। किस पुरुषार्थ की बात करते हैं यहाँ श्रीमद राजचंद्र जी स्वयं नाम लेकर के कह रहे हैं कि प्रभु आज्ञा से हूँ वही स्वरूप, जब प्रभु की आज्ञा हो और प्रभु जैसा बनूं, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा? बोलो, कोई इंतजार किसी का, किसका इंतजार है? बर्थडे का इंतजार है, डेट डे का इंतजार है, डेथ डे का इंतजार है क्या? वो अवसर कब आएगा? मृत्यु दिवस के जन्म दिवस क्या, किस चीज का इंतजार है कि वो आएंगे पंडित जी तो समझाएंगे? किस बात का इंतजार है? आंखों से दिखना बंद हो जाएगा तब पढ़ेंगे, कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा तब सुनेंगे, किसका इंतजार कर रहे हैं अपन? ये होनी है स्थिति, दो चार साल में कभी भी हो सकती है, आंखों से बिल्कुल दिखना बंद, अभी पास का दिखना बंद हुआ है क्या? किसी के दूर का दिखना कम होता है, पास चले जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। थोड़ा कहा है बहुत जानना, इससे ज्यादा क्या कहूँ, लेकिन अवसर खोने लायक नहीं है, बस दिल में ये बात बैठ जानी चाहिए, ये अवसर खोने लायक नहीं है। बिजनेस चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले, काम हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। कल भी कही थी मैंने, चक्रवर्ती दुकानें चला के चक्रवर्ती नहीं बनते क्या? फैक्ट्री और बिजनेस खोल करके चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना जाता है। मैं चक्रवर्ती सम्राट होने का उपाय बतला रहा हूँ और आपको दुकान की लगी है। बोलो, आप फैक्ट्री की सोच रहे हो, आप जॉब की सोच रहे हो, आप थोड़ी सी आजीविका की सोच रहे हो, मैं कह रहा हूँ रत्न आपके चरणों में पड़ेंगे। अब बोलो आप, वो बहुमूल्य चीज को छोड़ रहा है और इस चीज में लगा हुआ है, अमूल्य चीज दुर्लभ चीज को छोड़ रहा है और ये जो बहुत क्षुद्र है, चीटा है ये तो उसका, ये जो व्यक्ति इस दिशा में लगते हैं उनके अपने आप ऐसे काम होते हैं जो आप सोच नहीं सकते, सहज है वो सारी व्यवस्थाएं। इसलिए भैया अंत समय में ये अपूर्व अवसर को अपने लाइफ की अपूर्वता समझें, सच में कि ये जीवन बहुत अपूर्वता से मिला है, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, ये जनवाणी सुनने का अवसर बहुत दुर्लभता से मिला है, ये सद्भाग्य है, ये भाग्यशालियों को मिलता है। अभागे होते हैं जिनको जनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिलता। हम बहुत भाग्यशाली हैं, और न केवल भाग्यशाली हैं, हम अपने भाग्य को महाभाग्य में बदलेंगे, क्योंकि जनवाणी की बात को जीवन में उतारेंगे। तो सब मिलकर के एक ही रास्ता, एक ही लक्ष्य, एक ही दिशा, एक ही मंजिल, तो क्यों नहीं एक दूसरे से मिलकर के, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए हम जनवाणी का स्वाध्याय करें, इसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सफल करें। हमारे सबका जीवन सफल हो, इसी मंगल भावना से मैं बात को विराम देता
हूं। पंडित जी, हम परिवार के हिसाब से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं कि आपने जनवाणी का हमें लाभ दिया, और हम चाहते हैं कि हम उस तरफ उत्साह भी करें और गति करें।
बिल्कुल,
सोमवार से ही हम इस स्वाध्याय सीढ़ी हम
बिल्कुल शुरू की,
पीछे हम दुकान जाएंगे।
हाथ निकालिए, समय आपके पास, समय कब, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी उठिए, थोड़ा सा सुबह यदि समय नहीं मिलता है तो रात को देर तक जगिए। रात को क्यों होगा, सुबह ही करिए ना, दिन की शुरुआत इससे हो, इससे बढ़िया दिन क्या हो सकता है। जितना भी समय मिले, जो भी समय मिले, कभी कोई किसी को अति आवश्यक है, कहीं जाना है, वो एक मैटर अलग है, है ना, लेकिन इससे बढ़कर आवश्यकता क्या होगी। हमें कहीं जाना है क्या, जीवन छोड़ करके चले जाएगा तो क्या होगा, बताओ। ठीक है, होना चाहिए।
जय स्वरूप।